We are going to start the 9th World Congress on Clinical Preventive Cardiology 2014 with a public conference to begin with, in which all the delegates, faculty members and people from Abu Road and also from BK Colony and all the BK brothers and sisters are cordially invited. Aim of this public conference from 5 to 6 is to give you knowledge, to give you awareness about management and prevention of hypertension, diabetes, dyslipidemia, obesity and heart disease, because there is an epidemic of all the 5 in the country. So we have panelists from abroad as well as from India. Aaj Navi World Congress Clinical or Preventive Cardiology की शुरू की जा रही है. इसका शुभारंभ हम आप सब के लिए एक पब्लिक प्रोग्राम से कर रहे हैं, जिसमें आज जो मुख्य बीमारियां महामारी के रूप में भारत में जिससे सभी लोग ग्रसित हैं, लगभग 70% पॉपुलेशन इससे ग्रसित है, तो उसके बारे में आज कुछ अवेयरनेस आपको दी जाएगी, कुछ जानकारी दी जाएगी. और आपके जो प्रश्न हैं वो भी लिए जाएंगे। तो मैं चाहूंगा डॉक्टर एच के चोपड़ा को कि इसको जो इस कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन भी हैं वो इसकी शुभारंभ करें। ओम शांति।
थैंक यू वेरी मच सतीश भाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर रियली वेरी हैप्पी दैट द बर्थ ऑफ वर्ल्ड कांग्रेस ऑन क्लिनिकल प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी एंड इमेजिंग took place here, right here, 9 years ago. आज 9 साल हो गए हैं और हम नवी डॉक्टर मनचंदा, आई मे रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कम ऑन द डायस। और मुझे यह बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों का एफर्ट जिस प्रकार से भी सम्मिलित है, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो हमारा वर्ल्ड हार्ट डे का मेन ऑब्जेक्टिव है, हेल्दी हार्ट हेल्दी एनवायरनमेंट, उसके बारे में कुछ बात करें। तो बात करने के पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो हमारी फैकल्टी हमारे साथ है। सबसे पहले एक्सट्रीम राइट में, तो मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इंट्रोड्यूस कराना जरूरी है। डॉक्टर सतीश गुप्ता जो कि सेक्रेटरी जनरल है, परमानेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ WCCPCI, सबसे ज्यादा योगदान सतीश भाई का है जो कि बहुत दिल से मेहनत करते हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए। उसके साथ डॉक्टर IPS कालरा जो कि दिल्ली से हैं, बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं और वहां से यहां पर आए हैं और हर साल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लीजा ये अमेरिका से आई है, वॉशिंगटन से, ये भी कुछ ना कुछ वर्ड्स आपके सामने रखेंगी। एंड देन रिक लिवी, रिक इज अ वेरी फेमस मैन इन वॉशिंगटन और ये भी हमारे साथ पिछले 5-6 साल से जुड़े हुए हैं। और मेरी जो लेफ्ट में है डॉक्टर एस के पराशर जो कि जिन्होंने कि इसका सीड, इसका जो बीज बोया था हमारे साथ 9 साल पहले और अभी तक हर कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ आते हैं, जो भी सहयोग जिस प्रकार से हो सकता है हमारे साथ चलते हैं और हमें कोशिश करते हैं प्रोत्साहित करने का कि अच्छा काम करते रहे। प्रवीण प्लीज कम एंड जॉइन अस ऑन द डायस। मेरे साथ डॉक्टर रामाकृष्णन हैं, ये इनकी शायद पहली मीटिंग है हमारे साथ, यंग डॉक्टर हैं लेकिन इनके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। ही इज अ वेरी एमिनेंट डायनेमिक एंड इंटेलिजेंट डॉक्टर, ये प्रोफेसर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में और मुझे बहुत खुशी है कि वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो भी मेरे से हो सकेगा मैं हार्ट प्रोटेक्शन में आपके साथ हमेशा काम करूंगा। डॉक्टर दिद्वानिया ये बहुत ही एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हैं जो सैन फ्रांसिस्को से हमारे साथ आए हैं और हमारे साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं। हम समझते हैं इनके आने से हमारा गौरव बढ़ता है, हमें खुशी होती है। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम। ये आए सुबह माउंट आबू होके आए, मैंने कहा एग्जैक्ट 5 बजे शुरू करेंगे, डॉट एट 5 o'clock ही एंटर्ड। दिस इज द डिसिप्लिन व्हेन यू बिकम अमेरिकन, वी फील वेरी हैप्पी अबाउट यू सर। डॉक्टर मनचंदा इनको मैं क्या इंट्रोड्यूस कराऊं, प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, आजकल चीफ ऑफ कार्डियोलॉजी सर गंगाराम हॉस्पिटल में है। इनका काम प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में बहुत ही ज्यादा है और योगा के ये मास्टर हैं, इन्हें तो हम डीएन ऑर्निश ऑफ इंडिया कहते हैं, लेकिन बहुत काम किया है और हमेशा जुड़े हुए हैं और हर मीटिंग में हमारे साथ रहते हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट में मेरे साथ डॉक्टर प्रवीण जैन है जो कि ये वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल CSIR के और झांसी से स्पेशली यहां पर आए हैं और एक कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में आगरा में वेरी सून, लास्ट वीक ऑफ सितंबर में। ये सब फैकल्टी हमारे पास अभी है तो हम कुछ सिंपल सवाल पूछेंगे इनसे, आपको जवाब देंगे, कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में, कुछ किसी को डिफिकल्टी हो अपना हाथ ऊपर करके इंट्रोड्यूस करके अपने आप को पूछ सकते हैं। सबसे पहला सवाल मैं एक्सट्रीमली लेफ्ट में पूछूंगा डॉक्टर प्रवीण जैन से। डॉक्टर प्रवीण, भारतवर्ष में ये हार्ट अटैक दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहा है। 1960 में 1% था, 2003 में 7% हुआ, 2011 में 11% हुआ और 2014 में 15% है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की तो कोई कमी नहीं है, स्टेंट लगाते हैं, बाईपास सर्जरी होती है। क्या कारण है कि भारत में सबसे ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के अंदर? डॉक्टर प्रवीण जैन सर।
थैंक यू डॉक्टर चोपड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, ये बहुत चिंता का विषय है। हम लोग बहुत सी चीजों में अब तक पिछड़े हुए थे, अब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हार्ट की बीमारी में भी हमें आगे हम बढ़ रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है ये। सबसे खास वजह इसकी है, हम लोग पहले, आपने देखा होगा 20-30-50 साल पहले पैदल चलना, साइकिल चलाना ये बहुत कॉमन था। अब शहरों में साइकिल बहुत कम नजर आती है, ज्यादातर टू व्हीलर या फोर व्हीलर में आदमी चलता है। एक तो सबसे बड़ा कारण इसका शारीरिक व्यायाम की कमी हो जाना है। दूसरा मानसिक तनाव, जिसका कोई वजह है, जिसका कोई जस्टिफिकेशन, जिसका कोई कारण नहीं है, फालतू का हम लोगों का मानसिक तनाव। हमारा पड़ोसी इतना पैसे क्यों कमाता है, उसके पास बड़ी कार क्यों है, मेरे पास छोटी क्यों है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। खान पान, हम लोगों के देश में उन्नति हुई है, हर चीज में उन्नति हुई है, स्पेशली इकोनॉमिक उन्नति हुई है। इसके साथ साथ हमारा खाना पीना बदला है। पहले गांव का खाना या इवन शहरों में मोटा खाना इसको कहते हैं, घर का चक्की का पिसा हुआ आटा, फलों की बहुतायत होती थी खाने में, सब्जियों की बहुतायत होती थी। आजकल जंक फूड, बाजार में बना हुआ, बाजार का पैक टिन खाना, ये बड़ा कारण है। तम्बाकू का प्रयोग हमारे गांवों में ही नहीं, शहरों में भी बहुत है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ये स्त्रियों में भी बढ़ता जा रहा है, जो पहले बहुत कम था। तो ये भी एक बड़ा कारण है। आपको जान के ताज्जुब होगा, पिछले 20-25 वर्षों में, 30 वर्षों में अमेरिका और कुछ पश्चिमी यूरोप के देशों में तम्बाकू का प्रयोग, नमक का प्रयोग, बटर का प्रयोग, चिकनाई का प्रयोग काफी कम हो गया है। उसकी वजह से अमेरिका में 25-30% हार्ट की बीमारियां कम हो गई हैं। हमारे यहाँ हमारी फाइनेंशियल उन्नति के साथ साथ हमारा खाना पीना भी खराब हो गया है। कहने को तो रिच खाना है वो, लेकिन वो स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा नहीं है। तो ये एक कारण है। हम लोग तम्बाकू का प्रयोग ज्यादा करने लगे हैं, स्मोकिंग पर इसे बढ़ गया है। दूसरे, डायबिटीज हमारे यहाँ बहुत बढ़ती जा रही है। उसका कारण हमारे यहाँ एक औसतन वजन बढ़ रहा है और विशेष तौर से पुरुषों में हमारी जो चर्बी है पेट के चारों तरफ बढ़ती है, जिसको वेस्ट सरकमफ्रेंस कहते हैं, वो बढ़ रही है। तो जो ये खास वजह है हमारे यहाँ डायबिटीज की, और डायबिटीज बड़ा खास वजह है हार्ट की बीमारी होने का। तो डायबिटीज, इंडिया को डायबिटिक कैपिटल वर्ल्ड कहते हैं, तो लगता ये है कि कुछ दिन में हृदय की बीमारियों का भी वर्ल्ड कैपिटल बनने वाला है, दुर्भाग्यवश। तो डायबिटीज का होना ये खास वजह है हार्ट की बीमारी। दूसरे, डायबिटीज की दवाएं, ब्लड प्रेशर की दवाएं, ये बहुत सस्ती नहीं है, महंगी है। हालांकि प्रयास किए जा रहे हैं विभिन्न स्तरों पे ये दवाएं सस्ती हों, तो लोगों में थोड़ा सा ज्ञान की भी कमी है, ज्ञानता भी है। हमारे यहाँ लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई डॉक्टर मिले जो ब्लड प्रेशर या कोई भी बीमारी हमारी जड़ से ठीक कर दे। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जो जड़ से ठीक होने की संभावना न के बराबर है। तो ब्लड प्रेशर की खाली दवाई लेना काफी नहीं है, डायबिटीज की सिर्फ दवाई लेना काफी नहीं है। दवा उचित मात्रा में हो, उचित दवाएं हो, जिससे ब्लड प्रेशर 140/90 से नीचे हो, ब्लड शुगर खाली पेट 100 और खाने के 2 घंटे बाद 140-150 से कम।
थैंक यू प्रवीण, आई थिंक आई विल रिक्वेस्ट ऑल द स्पीकर्स टू लिमिट देयर प्रेजेंटेशन ओनली फॉर 3 मिनट्स।
ओके,
मेनी पीपल हियर। थैंक यू प्रवीण। आई थिंक डॉक्टर प्रवीण ने हमको कहा सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज कि डायबिटीज और ओबेसिटी, मोटापा भारतीयों में सबसे ज्यादा है। मोटापा, उन्होंने ये भी कहा कि तोंद होना अच्छी बात नहीं है। जिसकी तोंद 40 इंच से ज्यादा या 36 इंच से ज्यादा आदमियों में, औरतों में, और 32 इंच से ज्यादा औरतों में अगर ये हो, तो हमारे अंदर हार्ट अटैक की क्षमता 10 गुना बढ़ जाती है। तो इसे हम कहते हैं कि तोंद तो एक हिडन टेररिस्ट है। टेररिस्ट हम बाहर मार रहे हैं, अपने अंदर टेररिस्ट बैठा हुआ है। तो इसको बचाना है, इसकी बहुत सख्त जरूरत है। डॉक्टर प्रवीण जैन ने बहुत धैर्यता से कहा कि धूम्रपान नहीं करना है, तंबाकू का किसी भी शेप में, किसी भी चीज में नहीं होना चाहिए। तंबाकू की क्रॉप को वेजिटेबल क्रॉप से रिप्लेस कर देना चाहिए। तंबाकू का कोई भी फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। हमारे बीच डॉक्टर मनचंदा हैं, उनका भी काफी एक्सपीरियंस है। उनसे हम पूछना चाहेंगे कि हम जो खाते हैं क्या उसका संबंध हार्ट से है? डॉक्टर मनचंदा
जी हाँ, हमारा खान पान का बहुत बड़ा संबंध हृदय रोग से है, ना केवल हृदय रोग से और भी बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है। तो ये देखा गया है कि जो लोग अपने खाने में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा लेते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ तीन चीजों में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है और दूध के ऊपर जो मलाई आती है। तो इसलिए अंडा मांस नहीं प्रयोग करना चाहिए, वेजिटेरियन रहना चाहिए। बहुत साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं कि वेजिटेरियन लोगों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, उनको हार्ट अटैक कम होता है, कैंसर भी कम होता है। दूसरा, सैचुरेटेड फैट इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, जो भी तेल सर्दियों में जम जाए, जैसे घी है, मक्खन है, मलाई है, नारियल का तेल है, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और सबसे खतरनाक चीज जो हमारे देश में जिसके कारण हार्ट अटैक हो रहा है वो ट्रांस फैट्स हैं, हाइड्रोजिनेटेड ऑयल, जिसको हम वनस्पति कहते हैं। आपको सुनकर शायद हैरान होगा, ये जो ट्रांस फैट्स हैं ये हमारे बिस्किट में भी यूज होते हैं, ये जो हमारे ढाबे हैं, जो भी रेस्टोरेंट्स हैं उसके अंदर ये यूज होते हैं, जो इवन जो अच्छे फास्ट फूड चेन्स हैं, मैकडोनल्ड, पिज्जा, उसके अंदर भी ये ट्रांस फैट्स होते हैं। तो हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की हुई है कि ट्रांस फैट्स को लेबल किया जाए। हमारे देश में अभी नहीं हो रहा है, ये अमेरिका जैसे देश में हो रहा है, तो ये नहीं लेना चाहिए। इसकी जगह कौन सा इस्तेमाल करें? ऐसा तेल इस्तेमाल करें जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं हो, किसी तेल में नहीं होती है, सैचुरेटेड फैट्स कम हो और उसके अंदर ओमेगा 3 ज्यादा हो। सबसे अच्छा तेल सरसों का माना गया है और एक स्टडी हुई है इंडिया में कि जो लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं उनको 71% कम हार्ट अटैक होते हैं। अगर सरसों का तेल पसंद नहीं है तो कनोला ऑयल यूज कर सकते हैं या सोयाबीन का। तीसरी चीज, फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने चाहिए। एक बहुत बड़ा कारण हमारे देश में ये हार्ट अटैक का माना गया है कि हम फल और सब्जियां नहीं खाते, खासकर ताजी फल और सब्जियां हमारे देश में बहुत होती हैं। अगर 3-4 बार हम फल और सब्जियां खाएं हमें हार्ट डिजीज कम होगी, कैंसर भी कम होगा। इसके साथ साथ हमें कोई रिफाइंड चीजें नहीं खानी, जैसे उन्होंने बताया कि हमें ये रिफाइंड चीजें, प्रोसेस चीजें नहीं खानी चाहिए। जैसे रिफाइंड का मतलब है गेहूं को रिफाइन करके मैदा नहीं खाना चाहिए, व्हाइट ब्रेड नहीं खानी चाहिए, चावल है ब्राउन राइस खाने चाहिए, व्हाइट राइस नहीं खाना चाहिए। इसी तरह हमें तेल भी कोशिश करनी चाहिए कि रिफाइंड नहीं हो, क्योंकि रिफाइंड का मतलब वो खराब हो गया है। और इसी तरह गुड़ को हमने रिफाइन करके चीनी बना दिया है, तो चीनी का इस्तेमाल नहीं करें। फ्रूट वेजिटेबल फिर भी अच्छे हैं। और नमक का प्रयोग कम करें। इंग्लैंड में बहुत बड़ी स्टडी हुई है कि अगर हम 10% अगर हम नमक कम कर दें तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक की मात्रा बहुत कम हो सकती है। तो अपने खान पान का ध्यान रखें, तली हुई चीजें नहीं खाएं, घी मक्खन का प्रयोग नहीं करें, फल सब्जियां ज्यादा खाएं और इसके साथ साथ नमक का प्रयोग कम करें। कुछ नट्स हैं जैसे बादाम है, जैसे अखरोट है, वो भी बहुत अच्छे माने गए हार्ट डिजीज के लिए। जितने बादाम खाएंगे 10-12 उससे भी हार्ट डिजीज कम होता है। तो हमारे अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है तो 4 बीमारियां खतरनाक हो सकती हैं। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, जिसको डिसलाइपिडीमिया कहते हैं, ये हमारे देश में 70% लोगों को है। दूसरा, हमें मोटापा हो जाता है, जैसे बताया मोटापे का कारण है कि हम फास्ट फूड लेते हैं उसमें एनर्जी डेंस होता है। तीसरी चीज, इससे डायबिटीज हो जाती है, जो डायबिटिक कैपिटल में रिफाइंड चीजें खाते हैं उससे ही हो जाती है। और चौथी चीज है कि हमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये 5 कारण इसको दूर कर सकते हैं। छठा, एक और बीमारी जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, कैंसर। अगर आप फ्रूट और वेजिटेबल खाएंगे तो कैंसर भी उससे कम हो जाएगा। तो खान पान का हमारा बहुत बड़ा संबंध है। और हमारे पुराने जमाने में लोग क्या कहते थे, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न हम वो कहते हैं वैसा हृदय हमारा, वैसा ही दिल होगा। तो इसलिए हमें खान पान का ध्यान रखना चाहिए।
वेरी नाइस, आई थिंक डॉक्टर मनचंदा ने बड़ा सिंपल तरीके से बताया कि जैसा मन वैसा तन। इज अ नाइस थिंग इन इंग्लिश, इट सेज व्हाट यू ईट डेफिनेटली मैटर्स बट व्हाट इज ईटिंग यू मैटर्स मोर। ये अगर समझ आ जाए तो जिंदगी बहुत सरल है जीना। हमारी जो चॉइस होती है, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, वो हमारे एक माइंडसेट का एक्सप्रेशन है। जैसी हमारी चॉइसेस होंगी वैसे ही हमारा खान पीन होगा। अगर हमारी चॉइसेस अच्छी होंगी तो हमारा खान पीन भी अच्छा होगा, हमारा हार्ट हेल्दी होगा और एनवायरमेंट भी हेल्दी होगा। डॉक्टर मनचंदन ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर अपना प्रकाश डाला, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। भाई बहनों, मैं ये आपको कहना चाहता हूं, ओमेगा 3 फैटी एसिड की जानकारी हर इंसान के अंदर, हर घर में होना चाहिए। उन्होंने खास एम्फेसिस किया, अखरोट जरूर खाना चाहिए, बादाम जरूर खाना चाहिए, कम से कम जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के लोग हमारे पास हैं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये रिकमेंड करता है कि कम से कम 1 ounce ऑफ आलमंड, एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, तो अगर 10-12 जैसे डॉक्टर मनचंदा कह रहे थे वो खाएं, या मूंगफली खाएं, या वॉलनट 4 या 5 वॉलनट रोज फुल अगर रोज सेवन करें, उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत मात्रा में होता है। अब कुछ लोग सवाल पूछेंगे कि भाई कितनी क्वांटिटी होना चाहिए, कोई डोज है इसका? इसका डोज है 1.5 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक। अगर आप 1 ग्राम भी खा लें रोज, डॉक्टर मनचंद ने फिर कहा एक बार कि ये हार्ट अटैक नहीं, कैंसर को भी दूर करता है। तो आप क्या चाहिए आपको? बी वेजिटेरियन क्यों नॉनवेज का सेवन करते हैं जिससे नुकसान ज्यादा है? और उन्होंने ये कहा नट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, एक बार नहीं दिन में 5 बार 4 बार, उससे हेल्दी रहें। बहुत सिंपल है, लेकिन सोच बदलना होगी। अगर सोच नहीं बदलेगी, हम वही सोचेंगे पकोड़े, समोसे, हलवे, मिठाई, और वही डिफरेंट ब्रांड है कोई हल्दीराम, तो फिर हम हल्दीराम बन जाएंगे। सोच आपकी जैसी सोच वैसा ही आपका तन, और वो आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से खाने का सिलेक्शन आपके अपने ऊपर है। किसी को ब्लेम ना करें कि किसी को ओब्लाइज करने के लिए मैं खा रहा हूं। अब हमारे भारत में ऐसा होता है, दिवाली हो, किसने मिठाई खाई, खा लेंगे। आज बच्चे का जन्मदिन है, मिठाई खाना है। आज बीबी का जन्मदिन है तो मिठाई खाना है। आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, मिठाई खाना है। और तो छोड़ो, अपने कुत्तों को भी खिलाते हैं, और कुत्ते भी मोटे हो जाते हैं उनके, उनको भी हार्ट अटैक हो जाते हैं, उनको भी कैटरेक्ट हो जाता है, उनको भी आर्थराइटिस हो जाती है, क्या नहीं होता? तो मोस्ट ऑफ अस आर सफरिंग फ्रॉम व्हाट वी कॉल एज इरेटिक कंजम्पशन माल न्यूट्रिशन, नॉट ओवर कंजम्पशन, इरेटिक। वो नहीं करना है। बहुत अच्छा उन्होंने एक सिंपल वे में आपको बताया। अब हमारे साथ अमेरिका से स्पेशली आए हैं डॉक्टर प्रकाश सी दिदवानिया। प्रकाश नाम प्रकाश है इनका, प्रकाश डालेंगे अब आपके ऊपर। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर दिदवानिया, आप क्या समझते हैं, क्या एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है? डॉक्टर दिदवानिया सर,
या जैसे आपने पहले सुना डॉक्टर प्रवीण जैन से और डॉक्टर मानचंदा से, हिंदुस्तान में जो हार्ट अटैक और डायबिटीज की इतनी तेजी से बढ़ाई हो रही है, उसके 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण डॉक्टर प्रवीण जैन ने जैसे बताया था कि हम लोग एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब सबके पास गाड़ियां हैं, एक एक नहीं, दो दो तीन तीन गाड़ियां हैं। लोग बाग पार्क घर के अंदर करते हैं, बिल्कुल भी चलते फिरते नहीं है, तो एक्सरसाइज तो बिल्कुल हो नहीं रही है, और खाना बहुत ज्यादा हो रहा है। तो पर्टिकुलरली ऐसी सिचुएशन में जब खाना बहुत गरिष्ठ हो रहा है और कैलोरी कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, तो एक्सरसाइज और भी जरूरी है। मैं तो लोगों को यही कहता हूं कि एक्सरसाइज में जिम्नेजियम जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी डेली लाइफ की जो स्टाइल है उसको चेंज करिए। गाड़ी को जरा 2 ब्लॉक दूर पार्क करिए, रोज अपने गार्डन वगैरह में काम करिए, क्यों जो जिम्नेजियम और जो हेल्थ क्लब जाने का है वो काम रोज नहीं हो सकता है। सबका जीवन इतना व्यस्त है कि वो बहुत डिफिकल्ट है, कोई करेगा भी तो 4-6 महीने कर लिया लेकिन वो दिनचर्या में नहीं आ सकता। इसलिए ऐसी एक्सरसाइज जो डेली लाइफ में हो सके उसको अपने रूटीन में लाइए, और एक्सरसाइज से कई फायदे हैं। वेट ही नहीं कम होता एक्सरसाइज से, आपकी आर्टरीज जो होती हैं, जिसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम, जहां से आपकी वेसल या आर्टरी की बीमारी चालू होती है, एंडोथीलियम 1-15 मिनट के एक्सरसाइज के बाद नॉर्मल हो जाती है. तो अगर एक्सरसाइज रेगुलर करें तो आप सोच सकते हैं उससे एंडोथेलियम में कितना फायदा होगा. उसके अलावा एक्सरसाइज करने से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस मेन कारण है जो बड़े लोगों में या कुछ 30 साल की उम्र के बाद जो डायबिटीज होती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज टाइप 2 और एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है. उसमें दो चीजें का इम्बैलेंस होने से होता है, तो कैलोरी ज्यादा कंज्यूम करने से और दूसरा एक्सरसाइज नहीं करने से. और ये बताया गया रिसर्च में कि अगर आप कैलोरी कंज्यूम ज्यादा भी करेंगे लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, रेजिस्टेंस कम हो सकती है. तो डायबिटीज वालों को, जो जिन लोगों को डायबिटीज है उनको पता होगा कि जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनका शुगर अच्छा कंट्रोल में रहता है. अगर 2-4 दिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो शुगर उनका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है. बिल्कुल ऑटोमेटिक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप अपने आप में. तो ये प्रूव हो चुका है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है एक्सरसाइज से. डॉक्टर मानचंदा ने बताया खान पीन से कैंसर की कमी होती है. एक्सरसाइज अभी पिछले 5 सालों में 4-5 बड़ी बड़ी स्टडीज आई हैं यूरोप से जिसमें बताया गया जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों में कैंसर, खास करके जो पेट के कैंसर वगैरह हैं उनकी भी बहुत कमी होती है. उसके अलावा आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका एपिटाइट कम होता है, एपिटाइट कम होता है तो आप खाएंगे भी कम. तो एक्सरसाइज के कई फायदे हैं. उसके अलावा आपके हार्ट की जो आर्टरीज हैं उनकी भी मात्रा बढ़ जाती है जिनको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल. तो अगर आपको हार्ट अटैक भी होगा तो उस हार्ट अटैक से आप जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं. तो एक्सरसाइज के मतलब बहुत से फायदे हैं, ये तो मैंने कुछ फायदों का जिक्र किया है यहाँ पे. तो एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए, पर जो अपन हेल्थ क्रम में वगैरह में जाने के हिसाब से एक्सरसाइज करते हैं वो रेगुलर नहीं हो सकती. इसलिए मेरी सलाह होगी कि आप अपने डेली रूटीन में, दिनचर्या में ऐसा कार्य करें जिससे आपको रेगुलर एक्टिविटी हो. आजकल बड़ा फैशन चला है पीडोमीटर, या आजकल रिस्ट बैंड वगैरह जो फैशनेबल चले हैं, बच्चों को देखते होंगे आप, 50,000 रुपए के वहां $1,000-1,000 के आते हैं रिस्ट बैंड फैशन चली है. उसमें क्या करते हैं वो, आप कितने कदम चलते हो उसको नापते हैं. और ये कहा जाता है कि आपको 10,000 कदम रोज चलना चाहिए. तो 10,000 नहीं तो अगर 5,000 भी चलेंगे आप तो वो आपको बताने के लिए कि अपन लोग सोचते हैं अपन इतना चल रही है लेकिन वाकई में चलते नहीं है. उसके लिए पेडोमीटर सबसे सस्ती चीज है, बहुत $2-3 में आ जाता है, यहाँ भी करीब उतने पैसे में आ जाता होगा. अच्छा, मोबाइल में भी एप्स हैं अब तो मोबाइल में भी आप अपने सेट कर सकते हैं. तो उन सबसे करके आप अपने आप का एक्सरसाइज एक्टिविटी का काउंट कर सकते हैं. तो आपको ये नहीं दौड़ लगाना है. दौड़ लगाने से कई अभी स्टडीज हुई है 10-15 साल में कि दौड़ लगाने से ज्यादा फायदा नहीं होता. अगर आपको दौड़ लगाना अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना लोग बात कहते हैं जितने टाइम आप दौड़ लगाओगे, जो दौड़ लगाने में आप करोगे उतना टाइम आपका जिंदगी का बढ़ेगा नहीं. तो आप ऐसा काम क्यों करें, अगर आपको शौक है तो करिए, वरना आप दिनचर्या वाली एक्सरसाइज करिए, उसके बहुत फायदे हैं.
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर देदवानिया. है अमरीकी लेकिन आर्टिकुलेशन और एक्सप्रेशन प्योर भारतीय है. जैसे समझाया हिंदी में हमको विश्वास नहीं हुआ कि डॉक्टर देदवानिया बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने मैसेज बड़ा क्लियर दिया है, बड़ा क्लियर मैसेज है. एक्सरसाइज इज ए मस्ट राइट फ्रॉम द वूम्ब टू द टूम्ब. जब मां के पेट में बच्चा होता है, बच्चे के अंदर मूवमेंट होता है, एक्टिव होता है, मां खुश होती है कि मेरा बच्चा ठीक है. जब बच्चे का मूवमेंट कम हो जाता है तो मां भी विचलित हो जाती है. बच्चा एक्सरसाइज करता है, बच्चा पैदा होता है तो भी एक्सरसाइज करता है, चलता है, क्रॉल करता है, खड़ा होता है, एक्सरसाइज करता है. जब बच्चा 15 साल का हो जाता है, 20 साल का होता है, एक्सरसाइज होता है, पता नहीं 22 साल के बाद क्या हो जाता है उसको, लिथार्जी हो जाता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, मानसिक तनाव का रोगी हो जाता है, अबनॉर्मल चीजें खाता है. वो नहीं करना है. डॉक्टर देदवानिया ने कहा कि एक्सरसाइज करना है, चाहे वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, ट्रेडमिलिंग, सब एक्सरसाइजेज अच्छी हैं. डिपेंड ऑन किस एज में हैं आप. अगर आप छोटी उम्र में हैं तो जॉगिंग करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्विमिंग करें, डांसिंग करें, साइकिलिंग करें, ट्रेडमिलिंग करें, अच्छे एक्सरसाइजेस हैं. लेकिन अब 50 साल के बाद तो आप डांसिंग नहीं कर सकते ना, वो तो अनकस्टम्ड एक्सरसाइज हो जाएगी. आप बहुत ज्यादा दौड़ तो नहीं सकते, आर्थराइटिस हो जाएगी, स्पाइन की प्रॉब्लम हो जाएगी. ब्रेन के अंदर डिमेंशिया शुरू हो जाएगा। तो उम्र के अनुसार जो एक्सरसाइज आपको डॉक्टर कहें उनके बाद से करिए, अन हार्ट फ्रेंडली एक्सरसाइज नहीं करना है, वेट लिफ्टिंग, पुशअप्स ये नहीं करना है, इससे जल्दी उम्र में ब्लड प्रेशर हो जाता है, जल्दी उम्र में बड़ी तकलीफें हो जाती हैं। तो अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज इन एक्सट्रीम ऑफ हीट, एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड नहीं करना है। आई ऑलवेज से यूज इट और लूज इट। अगर बॉडी को यूज करेंगे तो लूज नहीं करेंगे, अगर बॉडी को यूज नहीं करेंगे तो जल्दी लूज करेंगे। चॉइस आपकी है। हमारे पास एक यंग डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर रामाकृष्ण, जो कि प्रोफेसर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में। इनको मोस्टली मैं सुबह 5 बजे फोन करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है सुबह 4:30 बजे उठते हैं, नहाते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, और अगर मैं फोन लेट करूं तो ये एक्सरसाइज करने निकल पड़ते हैं। रोज करते हैं एक्सरसाइज, आप देख सकते हैं कोई तोन नहीं है, कोई स्मोक नहीं करते, कोई ड्रिंक नहीं करते, एंड वेरी डायनेमिक पर्सन। आप जितना भी काम दें करेंगे, इनका स्टेमिना बहुत अच्छा है, एंड वेरी कूल पर्सन, वेरी काम पर्सन, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, प्योर वेजिटेरियन। आपके सामने रामाकृष्ण, अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आपने अपना इतना वेट कैसे मेंटेन किया, नंबर वन, और वेट बढ़ेगा तो कैसे बढ़ता है?
एक तो रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और खाना पीने में यही दो चीजें हैं जो अंदर जाते हैं, जो बच जाते हैं वो तोन में जाता है, जो अंदर चला गया जो यूज नहीं हुआ वो सीधा तोन में जाता है। तो आप इसका आप देख लीजिएगा कि आप, सभी लोग बोलते हैं कि मैंने तो यार बहुत काम कम, खाना पीना कम कर दिया, मेरा तो तोन कम नहीं हो रहा, वजन कम नहीं हो रहा। आपने कितने महीने से कम किया? एक महीने से कम किया, कितने साल का है एक्स्ट्रा? आप समझिएगा रोज 200 कैलोरी आप ज्यादा खाते हैं तो साल में कितना हो गया, कितने कैलोरी ज्यादा हो गया। और जो खराब चीजें जल्दी आ जाते हैं, जो अच्छे चीजें लेट आते हैं, जो आपका बढ़ना है बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत एफिशिएंट मशीन बनाया। जैसे कई सारे, जैसे अभी बताए हैं आप, सपोज एक्सरसाइज करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, आप 15 मिनट रिगरस साइकिलिंग करेंगे, आपका कैलोरी जो काउंट आता है 100 कैलोरी आता है। आप 15 मिनट रिगरस साइकिलिंग करेंगे तो आपका कैलोरी जो बचा है 100 कैलोरी, एक समोसा में 300 कैलोरी है। हमने तो बहुत अच्छा बना दिया भगवान ने कि हम करीब 2 किलोमीटर एक्सरसाइज करेंगे, हम 100 कैलोरी पे हम काम हमारा खत्म हो जाता है, जबकि एक समोसा में हम 350 कैलोरी खा लेंगे। तो यहीं पे गड़बड़ होती है। तो सबसे यह है कि जिसको भी वेट लॉस करना है, जिसको भी वेट मेंटेन करना है, उनसे एक लिस्ट बना लीजिएगा, एक हफ्ते का आप जो खा रहे हैं, हर एक चीज जो खा रहे हैं उसका आप लिस्ट बनाइए। उसमें आप देखिए कि कितने आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं जो जबरदस्ती आपने खाया है, जो आपने प्लान नहीं किया आपने ऐसे खा लिया, तो वो कम से कम रोज 200 कैलोरी होगा, उसी को आप कम करेंगे तो बहुत अच्छा आपका वेट मेंटेन हो जाएगा। और ये भी नहीं करना है कि क्रैश डाइट करें, उसके बाद इनवेरिएबली आप उसको एक साल या एक महीने या दो महीने आप फॉलो करते हैं, उसके बाद दोबारा वही वजन वापस आ जाता है। सो गो स्लो, गो स्टेडी एंड कीप इट गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। द मेजर प्रॉब्लम है कि वजन जल्दी बढ़ जाते हैं, जल्दी उतरता नहीं है, तो उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, परसिवियरेंस चाहिए। ऐसा नहीं कोई वो नहीं है, जादू नहीं है कि आप एक गोली खा लिया आपने वजन कम कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो यू हैव टू बी परसिस्टेंट एंड परसिवियरेंट, आपको वही लगे रहना पड़ेगा, तब जाके आपका वजन कम होगा। एक ही, दो ही तरीका है, आप ज्यादा इस्तेमाल करिए और कम अंदर ले जाइए, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है।
बड़ा अच्छा मैसेज दिया रामाकृष्णा ने कि ज्यादा लेके जाएंगे तो ज्यादा तोंद में जाएगा, अच्छी भाषा बोली इन्होंने। अग्नि तोंद कम करना है तो कम खाएं, कम खाएंगे तो लंबा जिएंगे, ज्यादा खाएंगे जल्दी चले जाएंगे। चॉइस आपकी है। अगर डायबिटीज आप चाहते हैं खूब खाइए। उन्होंने एक चीज और कही समोसे के बारे में, और मैंने गूगल में काफी ढूंढने की कोशिश करी कि शायद हिस्ट्री मिल जाए मुझे कि समोसा निकाला किसने, आज तक नहीं मिली। पता नहीं इतना इंटेलिजेंट इंसान कौन था जिसने समोसा के बारे में सोचा और उसमें इतनी चीजें डाली और फिर मोटापा बढ़ाया और प्री मैच्योर हार्ट अटैक कराया। हम चाहते हैं इन चीजों से दूर रहना। इनका मैसेज बिल्कुल स्पष्ट था। कि 300 कैलोरीज का समोसा आप खाते हैं, एक नहीं दो नहीं कई बार तीन भी खा लेते हैं। हम जाते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारे सामने एक एडवोकेट मिले, उनको हमने देखा तो चार समोसे खावे लंच टाइम पे। हमने पूछा,
सभी दो मिनट साइलेंस में मन का साइलेंस रखें, परमात्मा की याद में बैठे।
बहुत ही अच्छे शब्द थे, योगी बनो त्यागी बनो, ना कि भोगी बनो ना रोगी बनो। वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स। वही चीजें अभी रामाकृष्ण ने कहा कि योगी बनना है तो रोज एक्सरसाइज करना है, ना कि वो जो मैं एग्जांपल दे रहा था एडवोकेट का कि जो चार समोसे खाएं और खूब मोटे हो जाएं, वेरी पुअर डिसीजन टेकिंग पावर, क्या जजमेंट देंगे एट द एज ऑफ 40 मैसिव हार्ट अटैक। खाना लेके जाए, सत्विक खाना खाएं, और राजसिक नहीं और तामसिक नहीं। जो हमने यहां देखा ब्रह्म कुमारी जी के यहां, हमेशा जो ये खिला रहे हैं हमको सात्विक खाना, सत्वा होना चाहिए उसके अंदर, फ्रेश वेजिटेरियन फ्रूट्स नट्स ये खाना बहुत जरूरी है, और वेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर पराशर हैं तो ये आर्मी के डॉक्टर, लेकिन आजकल प्रैक्टिस में हैं। इनकी उम्र मैं आपसे पूछूंगा, कोई यंग लेडी से पूछूंगा, क्योंकि मुझे आप बता सकते हैं, एक्सक्यूज मी, यू प्लीज स्माइलिंग जस्ट गेट अप या जस्ट स्टैंड, नहीं यू, हाँ यस यस योरसेल्फ योरसेल्फ, व्हाट इज द एज ऑफ डॉक्टर पराशर?
वेरी लेस
आइडिया, कैन हैव सम माइक, समबडी हैज अ माइक? बड़ा सोच के बताएं क्योंकि कठिन सवाल है।
Sorry, it's a very difficult question. I hope he'll not feel offended if he hears my answer. Maybe 60 plus?
60 plus. Absolutely right. Next lady here, smiling. Front man, front man. Yes.
You were just 1 year decided.
Yes. Please.
I think 70 plus.
70 plus. Okay. I think... मुझे कितना फर्क मालूम पड़ा एक यंग लेडी की भावना, एक्सप्रेशन, परसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट है, और वो कह रहे हैं कि ये 60 साल के हैं। थोड़ी सी एल्डर लेडी जो आगे हैं, मेरे ख्याल से एल्डर है, मेरा ऑब्जर्वेशन तो गलत नहीं है, वो कहते हैं नहीं 60 नहीं 70 के हैं। और 10 साल का फर्क हो गया तो बहुत फर्क हो गया, 60 का 61 मान जाते, चलो हम विश्वास करते हैं आपकी बात को, 62 कह देते हैं, हम मान लेते हैं आपकी बात को। इस इंसान में बहुत संयम है। रात को हमने बहुत जबरदस्ती करी इनको कि खाना खाने चलो, बोले नहीं मुझे भोगी नहीं बनना है, भोगी मुझे रोगी नहीं बनना है, क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में लंच में इनम खा लिया। तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, हाउ मच टू ईट। Somebody says, I must eat what is in the handfulness. I do not know what is the definition of handfulness. Ab wo do haath aise bhi ho sakte hain, aise khao, ya usko skip bana do upar tak, ya usko flat kar do. To concept is variable. तो हम चाहते हैं जितना कम खाएं उतना सुखी रहेंगे, और ये इंसान ऐसा है जो कम से कम खाता है। और इनकी उम्र मैं थोड़ी ज्यादा ही बताता हूँ, मेरे से नाराज हो जाते हैं कई बार। ये मैं बोलता हूँ ये 80 साल के ही बोलते हैं, यार अच्छे तुम 80 साल के बना दिए हमको अभी से, यार अब तो आप 78 के हैं, 78 है, 78 के हैं इस एज में। ही इज आर्मी पर्सन। इनको इनको अगर आप सुबह देखे चलते हुए, आई कांट स्टैंड, ही वॉक वेरी ब्रिस्कली वेरी फास्ट, एंड दैट्स द डिसिप्लिन ऑफ लाइफ। डॉक्टर पराशर, आप मुझे बताएंगे आपकी यंग एज का खास प्रमुख रीजन क्या है?
एक तो यंग एज का खास रीजन है हमारी पत्नी। वो जब सवेरे सो के उठो, ये कर वो कर ये कर वो कर, मैं घर छोड़ के घूमने निकल जाता हूँ, तो उनकी वजह से मैं डेली करीब 40-45 मिनट घूमने निकल जाता हूँ कि 45 मिनट हमारे मन को शांति मिले। तो उनका ये बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन ये है कि ऐसा है कि ये तो अपनी किस्मत है या जो फैमिली के जीन्स हैं, अभी तक जो हमारे जितने सीनियर लोगों ने जो बताया है हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। पहली चीज आई बिलीव इन रेगुलर एक्सरसाइज, और उसमें कोई लिमिट नहीं है, चाहे बरसात हो तो आप छाते लेके जाओ हल्का, रेगुलर एक्सरसाइज करो, अपनी डाइट कंट्रोल करो बिल्कुल जितना आप कर सकते हैं, और बी हैप्पी। जितना आपका स्ट्रेस स्ट्रेन होगा डे टू डे वर्क में, कोई ऐसा नहीं जिसको आपने दो मेडिटेशन योगा स्ट्रेस स्ट्रेन उसमें रखे, ये मास्टर इनके सामने कोई नहीं कह सकता। लेकिन जितना आप स्ट्रेस स्ट्रेन अपना कम करोगे उतना ही आपको ज्यादा मेंटल रिलैक्सेशन मिलेगा। अपनी आप डाइट पूरी रेगुलर रेगुलराइज करो, खाने में तो आपने पूरी जिंदगी खा ली, आपने आप अपने को देखना है कि कितना खा सकते हैं। नंबर थ्री रेगुलर एक्सरसाइज और अपना वेट रिडक्शन। बाकी बहुत सी चीजें हैं, अब मैं बताऊंगा तो सभी लोग यंग हो जाएंगे तो मैं कहां जाऊंगा, इसलिए आई लीव इट टू डॉक्टर चोपड़ा टू एक्सप्लेन फर्दर।
डॉक्टर पराशर ने बड़ा अच्छा वर्ड कहा, उन्होंने कहा ये करो वो करो, ये क्यों नहीं किया, ये नहीं किया तो मैं बाहर भाग जाता हूं। लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि जो भी घर की पत्नी होती है वो शक्ति है, वो अपनी शक्ति यूज करती है और आपको काम करवाती है, सो दैट द होल फैमिली इज प्रोडक्टिव। इट इज द वुमेन हु इज द मोस्ट डिवाइन। ब्रह्म कुमारी ऑल वुमेन, दे कंट्रोल 24,000 सेंटर्स इन द वर्ल्ड। वॉट ए ब्यूटिफुल डिविनिटी इन ए वुमेन पावर। सो वी शुड सी द डिविनिटी इन योर वाइफ, एंड आई थिंक हिज एक्सरसाइज इज बिकॉज ऑफ डिविनिटी ऑफ हिज वाइफ। वी शुड नो दैट। आई थिंक वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू मैडम फॉर वॉट एवर यू डू फॉर हिम, एंड यू आर कीपिंग हिम यंग, एंड आई एम श्योर मेनी मोर पीपल विल लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट देयर वाइव्स एंड लिसन टू देयर वाइव्स सो दैट यू एक्सरसाइज रेगुलरली। वी हैव विद अस डॉक्टर रिक लेवी, हु बिलीव्स अ लॉट इन मेडिटेशन एंड योगा, एंड आई एम श्योर यू ऑल नो वॉट द योगा इज ऑल अबाउट। वेन आई से योगा मीन्स यमा नियमा आसना प्राणायाम प्रतिहारा धारणा ध्यान एंड समाधि, ऑल द 8 लिम्स, नॉट ओनली पोस्चर्स, नॉट ओनली मेडिटेशन। You should know do's and don'ts. You should have self-discipline. You must have asanas and postures, concentration, contemplation, transcendence and meditation. तो हमारे साथ जो रिक लेवी हैं, अमेरिकन है ये, लेकिन मुझे कहते हैं HK मेरे पास सारे भारत के नंबर हैं, मेरे सारे भारत के नंबर नोट कर लीजिए। He loves India. Rick, I would like to know why you love India.
How could I not? It would be impossible not to love India. What I'd like to address with you here a little bit is the role of chronic stress, particularly depression and anxiety, in heart disease. There are over 60 longitudinal studies and over 100 data analysis studies linking very clearly depression as a major independent risk factor for heart disease. The newer research on anxiety is showing the exact same type of correlation. So, for example, in all-cause mortality, not just heart disease, if you live a life that is stressed, and almost everyone does, India is listed in the World Nielsen Rating Survey as the most stressed nation in the world, with 87% of the women severely stressed and the men not far behind. So don't tell me you're not chronically stressed. Everyone is. If you live a life of chronic stress compared to a life of positive attitude, meaning, and purpose, the research shows a difference of 15 to 20 years. Also, with diagnosis of depression and or anxiety, risk for heart disease goes up 4 to 7 times, and once having heart disease, risk for more types and problems with heart disease plus mortality goes up by the same. So this is crucial here. We have to tackle this. Now, I am in mind-body medicine. We use 5 basic approaches: good diet and nutraceuticals, exercise, adequate sleep, treatment of special problems like obesity and smoking, and proven stress reduction techniques, powerful ones like psychotherapy, meditation, and clinical hypnosis, not stage hypnosis, clinical hypnosis. I want to put a powerful tool in your hand now at no charge, completely free. If you will be practical now and take out your pen and write down the following. Please go to...
I think we have limited time. We won't go for any...
My website, so
I think because only 15 minutes and 5-6 speakers. So maybe I think you just conclude what exactly you want to say.
If you go to powertoheelit.com to Heart Health Kit, purchase now, type in Bharat, and you get 55-page manual and 4 audio recordings at no charge. This will help you to heal your heart. Thank you.
Thank you, Rick. I think we'll advertise again what Rick mentioned, because he's going to give an oration, and we'll have a repeated announcement through the screen here as to what exactly he wanted to say about his website. Rick was very right. Rick ne kaha ki mansik tanav nahi hona chahiye. Rick ne ye bhi kaha ki mansik tanav hamare apne haath mein hai. Rick ne kaha mansik tanav motape logon mein zyada hota hai. Unhone ye bhi kaha ki mansik tanav sharab peene se, cigarette peene se badhta hai. Unhone ye bhi kaha कि मानसिक तनाव को दूर करने का तरीका मेडिटेशन है, हिप्नो, ही यूज द वर्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी. तो उन्होंने काफी अच्छे शब्द कहे, और ही इज अ मास्टरमैन, वर्ल्ड में काफी इनका नाम है. यहां बहुत सिंपल लग रहा है आपको, वहां इनका अपॉइंटमेंट देने के लिए 6-6 महीने वेट करना पड़ता है हमको. और आज हमारे बीच में रिक है और लीसा है. वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू सर. आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर हार्ट और माइंड का लिंक समझेंगे तो हेल्दी रहेंगे. जैसी ही सोच वैसे ही हमारा हार्ट. अगर हम सिनिकल हैं, होस्टाइल हैं, एंग्री मैन हैं, गुस्से वाले हैं, जेलसी है, हेट्रेड है, ग्रीड है, तो हार्ट के रोगी होंगे. अगर खुश हैं, पीस में हैं, प्योरिटी में हैं और एकदम मैग्नानिमिटी में हैं, तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा. उनका कहने का मतलब यह है कि एक फूल के समान रहिए. एक जो फूल होता है, ये आपके सामने छोटा सा फूल है, ये एक सेल्फलेस फूल है. ये किसी से घृणा नहीं करता, कभी गुस्सा नहीं करता, सबको देता है. इफ यू ऑल बिकम द एम्बोडीमेंट ऑफ फ्लावर,
we are going to have a healthy heart like flower. Thank you, Rick. Beautiful expression. Lisa is all the time with Rick. Rick cannot live without Lisa. Lisa, what do you think? Does Rick really practice meditation?
Well, that's not a very fair question. I'll answer it honestly, though. Rick never sleeps. He meditates through the night. You get more physical power, more mental power, more spiritual power through meditation than you do through sleep. That is well known to anybody who lives a yogic lifestyle. And just to quickly piggyback on some of what has been said here, my expertise is in public health. It's been mentioned just how high the incidence rate of chronic stress, depression, and anxiety in India is. It's very hard to get people to take this seriously, and yet it is the biggest threat to public health and well-being. And India has rates of depression that are the highest in the world, twice as high as rates of depression in the United States, especially among the women. Two things driving that. India's headlong drive to become a world superpower. That's obvious. Everybody's working very, very hard, and nobody has time really to take care of themselves. The other thing is that India has suffered a loss of her traditional cultural values. There are hundreds of studies showing the health benefits of the yogic lifestyle. There are hundreds of studies showing that people who have a deep spiritual life, who meditate, who go to temple, church, and mosque regularly, get sick less often, live longer, have higher rates of well-being. All of this drives up one's health and happiness and well-being. The other thing about chronic stress, too, is that it's the cause, if not a main cause, in most of the problematic behaviors we've been talking about from the days here. It's the reason why people start smoking and have trouble quitting, the reason why people don't eat a good diet, don't exercise, don't go to the doctor when they should. I could go on and on. The point is there are wonderful tools by which a person can get on top of their stress and prevent stress-related disorders like heart disease. They're abundantly available, and the best of these come from within the Indian culture.
Thank you, Lisa. Lisa ने कहा कि ये बड़ी personal बात है, अब मेरे पति के बारे में ये पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपको कह देती हूँ कि मेरा पति बहुत कम सोता है, लेकिन हमेशा meditative mode में रहता है. Meditation in thinking, meditation in eating, meditation in sleeping. Meditation का मतलब है present moment awareness. उनको जानकारी है किस moment में कैसे हैं. That's what the meditation is all about. Experiencing about the silence. He is all the time in silence, all the time with his soul, all the time with his divinity. Beautiful words, Lisa. And Lisa said कि ये भी मैं आपको बता दूँ कि भारतवर्ष में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, स्पेशली औरतों में नेगेटिव कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है, तो हमको उसके लिए कुछ करना चाहिए. और वो कहते हैं मेडिटेशन का ओरिजिन भी भारतवर्ष में हुआ है, तो उसको अपनाना चाहिए. वो थियोरेटिकल नहीं होना चाहिए. मेडिटेशन के बारे में जानकारी एक तरफ है और उसकी प्रैक्टिस करना एक तरफ है. अगर हम सब मेडिटेशन करें तो हार्ट अटैक कई दोस्तों को रोगा. थैंक यू. इट वॉज वेरी नाइस एक्सप्रेशन लीजा. वंडरफुल. वी हैव विद अस डॉक्टर कालरा हु बिलीव्स अ लॉट इन मेडिटेशन. ही ऑल्सो गेट्स अप इन अमृतवेला. आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड. 4 o'clock इन द मॉर्निंग. एंड व्हाट इट डज इट 4 o'clock आई स्टिल डोंट नो. डॉक्टर कालरा, वी आर लाइक टू थ्रो अ वर्ड ऑन अमृतवेला एंड मेडिटेशन.
जब हमने इस कार्यक्रम को शुरू करा तो उस वक्त ओम शांति का पाठ पढ़ा, तो उस वक्त मेरा रोम रोम बॉडी बिल्कुल रिलैक्स कर रहा था. हर वक्त गुरु नानक ने गॉड ऑलमाइटी की डिस्क्रिप्शन करी एकमकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सबंग गुरु प्रसाद. इसे साचा साहेब साचा नाम पाख्या पौ पार गॉड इज ट्रूथ. उसकी लैंग्वेज लव. बाबा की लैंग्वेज है लव. लव इज एवरीबॉडी. हाउ टू सी साचा साहेब साचा नाव पाख्या पौ अपार दात करे दातार. ही गिव्स यू एवरीथिंग. ही गिव्स यू फिर के आगे रखिए जिस जिससे दरबार. हाउ यू कैन सी हिम. हाउ यू कैन कम इन यू कैन सी हिज फील हिम. ही सेज अमृत वेला सच नाम बड़े आई विचार. ऋषि मुनीस हैव स्ट्रेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अमृत वेला. एट दैट टाइम जैसे भगवान के दरगाह के दीवार खुलते हैं उस वक्त उसकी आराधना करो उसके गीत गाओ. तो बड़े आई विचार फेर के आगे रखिए जिससे से दरबार. अमृत वेला सच नाम बढ़िया ये विचार. और उसका मेडिटेशन क्या है उसका हुक्म मानना. जो वो करे वो सर माथे पर वो दुख दे सुख दे झोलियां भर लें शिकायत नहीं करिए. थैंक यू वेरी मच. उसको थैंक्स करें. और जब वॉक करें उस वक्त नो टॉकिंग वाइल वॉकिंग. अपने अपने आस्था के मुताबिक ओम अल्लाह वाहिगुरु जो भी है उसका जाप करते रहें. सोचे मत इधर उधर. तो उसका जो वॉकिंग का असर ज्यादा अच्छा होता है.
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कालरा. डॉक्टर कालरा ने स्पष्ट रूप में कहा कि अमृत वेला जो भी वेला हमारे अंदर साइकिलें होती हैं 24 घंटे की उसमें वात पीरियड होता है कफ पीरियड होता है पित्त पीरियड होता है. पित्त पीरियड डाइजेशन के लिए अच्छा होता है. वात पीरियड बहुत अच्छा होता है हमारी मेडिटेशन के लिए. और ऐसी कई चीजें बहुत अच्छी होती हैं तो उसकी जानकारी हम सबको होना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि वात पीरियड में अगर हम मेडिटेशन करें या कफ पीरियड में हम मेडिटेशन करें तो बहुत अच्छा होगा. लेकिन मेडिटेशन अगर हमेशा ही करते रहें तो बहुत ही अच्छा होगा. एक वर्ड उन्होंने यूज किया रोम. रोम का मतलब रोम नहीं है. 60 ट्रिलियन सेल्स इन अवर बॉडी शुड बी नर्चर्ड बाय 6 ट्रिलियन पॉजिटिव इमोशंस एवरी सेकेंड. बड़ी गूढ़ बात कही है उन्होंने. समझना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं. अगर हम इसको समझेंगे और रोज अप्लाएंगे तो हमारी केमिस्ट्री में एपिनेफ्रिन नहीं होगा ज्यादा नॉर एपिनेफ्रिन भी नहीं होगा ज्यादा एंडोर्फिन ज्यादा होंगे ओपिएट्स ज्यादा होंगे जो कि हमें एक पैरासिंपथेटिक पर्सनैलिटी बनाएंगे ना कि सिंपथेटिक पर्सनैलिटी एजिटेटेड पर्सनैलिटी. थैंक यू डॉक्टर कालरा. इट वॉज ए ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन. एंड नाउ वी हैव अ मास्टर ऑफ राजयोगा मेडिटेशन सतीश भाई. हम उनसे पूछेंगे थोड़ा राजयोगा के बारे में. हमें बताया है कि राजयोगा मेडिटेशन क्या है और इसे कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. सतीश
ओम शांति. राजयोग का मेडिटेशन एक कला है जिसके द्वारा आप अपने मन को पॉजिटिव बना सकते हैं. मन को दमन नहीं कर सकते हैं. मन क्या काम है सोचना. नेगेटिव सोचने से टेंशन होती है स्ट्रेस होती है. पॉजिटिव सोचने से खुशी मिलती है. और पॉजिटिव जो मेडिटेशन हमको क्या करता है नॉर्मली हम क्या करते हैं या तो हम पास्ट में जाते हैं या फ्यूचर में जाते हैं. जो पास्ट में हमें साइकोलॉजिकल या इमोशनल हर्ट्स हुई हैं पुरानी दुख पुरानी तकलीफें हमें लोगों ने धोखा दिया चोट पहुंचाई मन को भावनाओं को चोट पहुंचाई या तो उसके बारे में सोचते रहते हैं या फ्यूचर में जो इनसिक्योरिटीज हैं फ्यूचर में क्या होगा कैसे होगा कब होगा पता नहीं क्या होगा उसके बारे में सोचते 90% विचार हमारे इसके बारे में चलते हैं. प्रेजेंट में हम रहते नहीं. तो राजयोग का मेडिटेशन क्या करता है कि आपको प्रेजेंट में रहना सिखाता है. और राजयोग का मेडिटेशन बेसिकली क्या है ये चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस है. आउटर सेल्फ से हम इनर सेल्फ कॉन्शियस बन जाते हैं। आउटर सेल्फ क्या है हमारा, या तो ये बॉडी है, हम अपनी देह को देखते हैं, दूसरों की देह को देखते हैं और अपने आप को यही समझ लेते हैं, जो हमारा आउटर सेल्फ है, रियल सेल्फ नहीं है। बॉडी हम यही छोड़ के जाते हैं, एक दिन शरीर में आते हैं, एक दिन शरीर छोड़ के चले जाते हैं। सब जानते हैं इस बात को, किंतु हम इसमें अटैच इतने ज्यादा हो जाते हैं कि जिससे हमारा ये आउटर सेल्फ कॉन्शियसनेस पैदा होती है। दूसरी बात जो है बॉडी रोल कॉन्शियसनेस, मैं डॉक्टर हूं, मैं मां हूं, बाप हूं, पति हूं, बिजनेसमैन हूं, बैरिस्टर हूं, ये भी हमको पैदा नहीं होते इसके साथ, ये हमारा रोल है। इससे ईगो पैदा होती है, अटैचमेंट पैदा होती है, एंगर पैदा होता है, ग्रीड पैदा होती है, तो ये जो है हमारे हमें नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं। और तीसरी बात है मेटीरियल कॉन्शियसनेस, जो चीजें हमारे घर है, मकान है, जायदाद है, अकाउंट है, कार है, हमारी बुद्धि इसी में लगी रहती है। तो तीन चीजें आउटर सेल्फ है जो हमारे साथ नहीं जाती है, और इससे इनसिक्योरिटी पैदा होती है, उससे हमारे अंदर ये विकार पैदा होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पैदा होते हैं, जल्दीबाजी पैदा होती है, आलस पैदा होता है, चिंता पैदा होती है, डर पैदा होता है, शक अनुमान पैदा होता है, प्रेशर फील करते हैं, ईर्ष्या द्वेष पैदा होती है, और उससे तनाव पैदा होता है, और इस तनाव की वजह से हम गलत खान पान करते हैं, क्योंकि इस तनाव को दूर करेंगे चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, कुछ लोग स्मोकिंग करेंगे, कुछ लोग शराब पियेंगे, कुछ ड्रग्स खाएंगे, और जो आदमी टेंशन में रहता है उसको अच्छी नींद नहीं आती है, क्योंकि वो सोने की कोशिश कर 10 बजे, नींद उसको 1 बजे आती है, 1 बजे सोएगा तो सुबह 8 बजे उठेगा, तो वॉकिंग कहां करेगा, फिर जिम में जाता है, तो इस तरह से उसको बीमारी आती ही रहती है, खान पान खराब, सैर नहीं, देर से सोना, देर से उठना, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक खराब हो जाती है, और स्ट्रेस के कारण से हमारे टेंशन वाले हार्मोन्स एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, ये सब हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिससे हमारी एंडोथेलियम डैमेज होती है, हार्ट की बीमारी शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज बढ़ता है। किंतु राजयोग मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, इनर सेल्फ कॉन्शियस बनते हैं, मैं कौन हूं, हु एम आई, ये पहचानते हैं, मैं देह नहीं, मैं रोल नहीं, मैं मेटीरियल नहीं, मैं एक आत्मा हूं। आपने सुना होगा कोई तभी सुनी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, मैं आत्मा हूं, एक चमकता हुआ सितारा हूं जिससे बॉडी चलती है, मैं बॉडी को चला रहा हूं, ये सात एनर्जी आत्मा से निकलती है जिससे बॉडी चलती है, और परमात्मा सात गुणों का सागर है। तो सबसे पहले इसमें अपने आप को पहचानते हैं, अपने बाप को पहचानते हैं, और उससे मेरा क्या संबंध है, और फिर इस संसार रूपी नाटक में, इस ड्रामा में हमारा क्या रोल है, दूसरे का क्या रोल है, और हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है इस ड्रामा में कर्म सिद्धांत के अनुसार। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा। इसको मैं सिंपल भाषा में ABCD कहता हूं, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, बाबा मीन्स गॉड, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा। जितना हम ABCD को बार बार रिवाइज करते हैं उतना ही हमारा मन शुद्ध होता जाता है, थॉट स्पीड स्लो होती जाती है, उससे शांति आती है, और उससे फिर हमारे अंदर प्यार पैदा होता है, सच्चा प्यार पैदा होता है, और उससे खुशी आती है, आनंद आता है, और शक्ति सहन शक्ति पैदा होती है, सामना करने की शक्ति पैदा होती है। तो इस तरह से सात एनर्जी का निर्माण होता है, इस सात एनर्जी के निर्माण से हम सत्व प्रधान बनते जाते हैं, सत्व जो कहा सत्व बनते जाते हैं, और इससे हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा एनर्जी हमारे अंदर ज्यादा रहती है, और हम हमारे आसपास एक ऑरा का निर्माण, आभा मंडल का निर्माण होता है, और हम अपनी कर्मेंद्रियों पर सबसे पहले अपने मन पर राज करना शुरू कर देते हैं, फिर हमारी बुद्धि भटकती नहीं, हमारी संस्कार जो पुरानी आदतें कमजोर ठीक हो जाती हैं, और खान पान पे कंट्रोल आता है, आंखों पे कंट्रोल, नाक पे कंट्रोल, जीभ पे कंट्रोल, कानों पे कंट्रोल, हाथ पैरों पे कंट्रोल आता है, हमारे अंगों पे भी कंट्रोल आता है। तो राजयोग माने राजा, हम राजा बन जाते हैं अपने मन के, बुद्धि के, अपनी आदतों के, अपनी पांचों कर्मेंद्रियों के, और अपने सब अंगों के। तो राजयोग एक वो कला है, वो विज्ञान है, जिसके द्वारा आप सदा स्वस्थ रह सकते हैं, सदा खुश रह सकते हैं। ओम शांति।
थैंक यू वेरी मच सतीश, आई थिंक द एक्सप्रेशन वॉज ब्यूटिफुल। आप मुझे बताएं हाथ ऊंचा करके कितने लोग राजा बनना चाहते हैं? मेरे ख्याल से सभी बनना चाहते हैं राजा। तो उन्होंने एक्सप्रेशन में कहा राजयोग मेडिटेशन से राजा बनना है। ही यूज द वर्ड सेल्फ, रियल सेल्फ, रोल सेल्फ एंड ए फिजिकल सेल्फ। अगर आपको रियल सेल्फ बनना है तो फिजिकल सेल्फ और रोल सेल्फ भी वैसे ही होगा, लेकिन काम सेल्फ लेवल से करना होगी, कॉन्शियसनेस जिसे वो आत्मा कहते हैं। अगर रोज आत्मा का ज्ञान करेंगे, आत्मा को फॉलो करेंगे, तो आपके अंदर अच्छे लक्षण होंगे, बुरे विचार नहीं आएंगे, बुरी आदतें नहीं आएंगी, और उसका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। डेली सुबह मॉर्निंग में हमारे यहाँ 4-4:30 बजे से रोज क्लासेस होंगी मेडिटेशन राजयोगा पे, और 6:30 बजे से रोज सुबह सिस्टर बहन जो है शिवानी वो समझाएंगी राजयोगा मेडिटेशन क्या होता है और भी कई चीजें बताएंगी। आई थिंक इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी ऑल शुड अटेंड दोज सेशंस। शाम को भी डेली उनका एक एक्सप्रेशन होगा जिसमें आप सब समझेंगे कि राजयोगा मेडिटेशन क्या होता है। यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट सतीश गुप्ता इज वन हु डिड अ लॉट ऑफ वर्क ऑन सो कॉल्ड माउंट आबू हार्ट ट्रायल, जो कि पब्लिश हुई है, और काफी काम है इनका, ये बोलने के लिए नहीं है, काफी ऑब्जेक्टिव डेटा है जो बताता है, जो कि पब्लिश हुआ है बड़ी बड़ी जर्नल्स के अंदर। हमारे साथ जॉर्ज अब्राहम फ्रॉम यूएसए। आई विल लाइक टू आस्क हिम, अब्राहम, व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव, स्पेशली एंगर? व्हाट विल यू से अबाउट द एंगर? हाउ विल यू डिफाइन एंगर? क्या समझते हैं एंगर के बारे में? आई होप यू अंडरस्टैंड हिंदी, और आई शुड स्पीक ओनली इन इंग्लिश।
आई अंडरस्टैंड हिंदी बट नॉट गुड,
स्पीक इन इंग्लिश, फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम, गो अहेड। सो टॉक अबाउट एंगर।
एंगर इज एन एक्सट्रीम स्टेट ऑफ इमोशन वेयर वन लूजेस कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, एंड इट अफेक्ट्स ऑल द हॉर्मोन्स इन द बॉडी, इंक्रीजेस द नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, हार्ट रेट गोस अप, respiratory rate goes up, the blood pressure goes up, and all these negatively affect the longevity or the duration of the heart, thereby contributing to problems with the heart, heart attacks, strokes and such.
Dr. Abraham ne bataya, anger ek negative emotion hai, isse kisi ko kuch fayda nahi hua, चाहे वो जस्टिफाइड एंगर हो चाहे अनजस्टिफाइड एंगर हो, एंगर तो एंगर ही है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपके अगर अंदर जो पदार्थ हैं, जो एक पॉइजन है जिसे हम कहते हैं एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन, उसकी मात्रा 10 गुना बढ़ जाती है, उससे पेल्पिटेशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक भी हो जाता है। तो लर्न नॉट टू बी एंग्री, एंगर इज एजिटेशन आइजर, इट मे क्रिएट एजिटेशन, वरी, एंजाइटी, वो फायदा नहीं है, सोल्यूशन भी कुछ नहीं होता, हम जबरदस्ती अपने टेम्पर लूज करते हैं। तो उनका एक कहना बहुत अच्छा है कि एंगर नहीं होना चाहिए, एंड वी शुड लर्न, इट इज हार्मफुल फॉर बोथ, जो आदमी गुस्सा करता है उसके लिए भी हार्मफुल है, और जो गुस्से का शिकार होता है उसके लिए भी हार्मफुल है। तो कोशिश करना चाहिए हाउ टू मैनेज एंगर, ये एक सब्जेक्ट है जिसमें हम कई घंटे डिस्कस कर सकते हैं, समय बहुत कम है तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अलॉन्ग विथ अब्राहम वी हैव माइक हुले, ही इज ऑल्सो प्रेजेंटिंग फ्रॉम यूएस। जस्ट अपोजिट इमोशन, आई सी यू ए वेरी नाइस स्माइल ऑन योर फेस, व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ लाफ्टर एंड हेल्दी हार्ट?
यू नो आई बिलीव इफ यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड इट हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट एंड यू पास दैट ऑन। If it's subconscious, it becomes relevant and becomes real. So just adopting that positive attitude reflects in your work, reflects in how you reflect on other people. So it's important to have that attitude.
Excellent. Mike Hule says, laughter is energizer. Laughter is equalizer. Laughter is stabilizer. Laughter is happinessizer. Laughter is equipizer. Wonderful, wonderful expression. Hule says, if you want, अगर आपने अपने आप एनर्जी को पैदा करना है तो हंसीए, और हंसीए तो बिना रीजन के हंसीए। Don't laugh at somebody else, नहीं तो जूते पड़ेंगे। कभी किसी के ऊपर नहीं हंसना, अपने ऊपर ही हंसना है।
लोग कहेंगे पागल हो गया है, लोगों को कहने दीजिए. अनकंडीशन लाफ्टर इज द बेस्ट लाफ्टर. आई कॉल लाफ्टर एज ए इंटरनल जॉगिंग. दोज हु लाफ दे लास्ट. अमेरिका में जब सेंटर बने, लाफ्टर सेंटर, वो कैसे बने? एक डॉक्टर को कोलेजन हार्ट डिजीज हो गई. कोलेजन की डिजीज मतलब जॉइंट वॉइंट स्टिफ हो गए. तो डॉक्टर बड़ा हैरान, बड़ी दवाइयां ली उसने, कभी एस्पिरिन ले, कभी ब्रूफेन ले, कभी कुछ ले, वो ठीक ही ना हो. तो डॉक्टर बेचारा बहुत हंसता था अपने ऊपर कि मुझे ये क्या हो गया. हंस हंस के उसकी बीमारी ठीक हो गई. देन द ओरिजिन ऑफ लाफ्टर क्लब केम्स इन न्यूयॉर्क. दिस इज हाउ लाफ्टर क्लब स्टार्टेड. सो दोज हु लाफ दे लिबरेट सेरोटोनिन, दे लिबरेट एंडोर्फिन. हुले इज फ्रॉम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन. वेरी ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन हुले, विच यू मेंशन, लाफ्टर इज द रियल थेरापी टू हैव ए हेल्दी हार्ट. वेरी ब्यूटिफुल मैसेज. आई थिंक इट इज लॉट ऑफ मीनिंग. प्लीज लाफ विदाउट ए रीजन एंड डोंट लाफ एट एनीबडी एल्स. ए बेबी लाफ्स 400 टाइम्स अ डे टू मेक यू लाफ, बट ए एडल्ट नॉट इवन 4 टाइम्स अ डे. What a pain. It's free. But we have stopped laughing. Please laugh and have a healthy heart. Very nice expression. We have with us Nihaj Muhammad from US. All of them are coming from United States all the way. Nihaj, what do you think is the role of alcohol in a healthy or an unhealthy heart? Is there any relationship of alcohol with the health of the heart?
I'm actually not a medically trained professional, but I could give you a very simple insight about what Professor Catherine Talbot shared with me, but it's a little different to what you just asked me. She said that, you know, in India, most of the time, everybody seems to address the problem of cardiovascular diseases with adults, but many times they forget about the children, bringing them up at the right time, you know, giving them enough training to live well, eat healthy, you know, exercise and all that. And there seems to be an unbelievable amount of stress in children, which either limits them in exercise. It could be either become an IAS, become an engineer, become a doctor, or sometimes it's either become a Sachin Tendulkar or become Sania Mirza. So there's always a stress at a small level. I'm sorry I'm not able to answer your question perfectly.
Okay. I think Nihaj is very clear and very straight. And he said, I don't have much answer to talk about the alcohol. But I must tell you, ladies and gentlemen, there is not a single benefit of alcohol so far the health of the heart is concerned. It's only a publicity stunt. There's very little data. Very little data. Odd data. I don't know why Rama, just one thing. Why Rama is picking up. I have to negate him if we have to fight. There's a huge data. I've gone through Google, almost 54,000 articles on alcohol and health of the heart. 98% are negative. 2% are positive. So I don't think I'm going to recommend alcohol to everybody. Some occasions one is used to red wine, people used to say it has some benefit effect. There is something like a resveratrol, which used to be in alcohol, and they say it has some beneficial effect. But overall, if you ask my opinion, no alcohol, please. And second opinion, low alcohol. And third opinion, no alcohol. If you see our data of inter-heart data or many other studies, people who are living in extreme cold, like in United States or Germany, there they consume a different environment. Here we consume a different environment. How much you consume also matters. How many packs you consume, if we define whiskey, wine and beer and so many things, the data is variable. But the warning sign is very clear. One should not take, if you are not used to, don't start. If you are used to, whatever you are taking, less amount. Rama, you want to say something now?
Like, we had a very hard data from R&D Institute, which is published. And this may be the one of the only countries where alcohol increases the mortality, increases the cardiovascular mortality. Maybe because most of the people who drink are depressed or have some psychological issue or chronic stress, or another major issue, that is the way we drink. Like, we used to drink and have a lot of oily snacks along with it. That may be one of the reasons. It clearly increases mortality in Indians. It's absolutely clear. So alcohol doesn't help India, surely. It only helps some of these companies, alcohol making companies only.
So I think jo maine kaha usko unhone endorse kiya. Unhone ye kaha ki ye malum pad gaya hai ki sabse zyada morbidity aur mortality maut aur bimari ka karan alcohol hai. Fayda kuch nahi hai. ये कह रहा हूँ एक अच्छी बात कही बहुत बढ़िया अभी डॉक्टर मनचंदा भी कहेंगे इसके बारे में शायद अल्कोहल बड़ा थॉट प्रोवोकिंग है मेरे ख्याल से इन्होंने ये कहा रामा ने कि शराब पीने से एडवर्टाइजमेंट कंपनी का बड़ा फायदा होता है उन्होंने ये भी कहा शराब पीने से जो शराब को मैन्युफैक्चर करते हैं उनका बड़ा फायदा होता है लेकिन शराब पीने वाले को सिर्फ नुकसान ही नुकसान Dr. Manchanda, you want to
yes.
say something?
You see, recently one more harmful effect of alcohol which has been published in many American journals is that even taking one peg a day causes your heart to be irregular. It's called atrial fibrillation. Even one peg or half a peg a day is also harmful. For Indians, as Dr. Ambujra has shown, it's very, very harmful. So I think we should not touch alcohol at all. Atrial fibrillation is a very, very bad disease. It can cause clots in the brain. It can cause paralysis. And alcohol is directly linked to it. There are several studies which have come. Even very small amount can be very, very harmful. So do not touch alcohol at all.
The lady wants to say something. Yes? Please.
Sumita Chaudhary, cardiologist from Houston. And I could not agree with Dr. Chopra and Dr. Ramakrishna more because the triglyceride emphasis is also very much needed. We have the world's highest heart disease burden in India, and we have very high triglycerides also in India. And I believe that the high alcohol, the reason we found a negative correlation in India is probably because of very high triglycerides. We have looked at this at different research projects in the U.S., and we have found that triglycerides are linked to atherosclerosis, and also we have what we have called the insulin resistance syndrome in India, and it is a huge problem. I would like to encourage all the elite physicians here to put an emphasis on screening of cholesterol, fasting lipid profile, or even the non-fasting. Now we know that even the non-fasting, non-HDL cholesterol is very important. And these are linked to heart disease, and I think that we, as a community that are enlightened about this cholesterol and the role it plays in the terrible epidemic of heart attacks that we are engulfed with in the India subcontinent, we need to really emphasize this. And you know, diet is so important. You know, yes, meditation and exercise are critical for our well-being, and on top of that we have to realize that indeed we are what we eat, so you have to exercise the same constraint as you show when you do meditation, the same kind of discipline in what we put in our bodies. That's so important. You must put only premium food in the body, and that would include just vegetables and fruits, some nuts, and try to avoid the carbohydrates. I love the example of the samosa and the 300 calories, and I think all too often we are consuming carbohydrates for breakfast, carbohydrates for lunch, carbohydrates for dinner, and not really consuming, going back to our roots, the yogic way of life, having lots of fruits, lots of vegetables, really going down on the low-carb diet. You know, recently there was an Anna's article also on this.
Thank you. Thank you, Sunita, for re-emphasizing to control triglycerides. Triglyceride is again a bad cholesterol, which is very harmful. Indians are highly vulnerable. They already have a high levels of triglycerides. उन्होंने ये भी कहा कि शराब ज्यादा पिएंगे तो triglycerides बढ़ जाएंगे. वो भी condemn कर दिए. Dr. Sunita is from US. Everybody is condemning. Why to take alcohol? हम फल जूस क्यों ना पिएं? फल क्यों ना खाएं? Nuts क्यों ना खाएं? तो मेरे ख्याल से जितनी भी पैनल है कोई भी फेवर में नहीं है तो दी मैसेज इज नो अल्कोहल एंड नॉट लो अल्कोहल मैसेज वेरी क्लियर आई थिंक दिस इज व्हाट द ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ एवरीवन रामा स्टिल वांट टू स्पीक आई टोल्ड यू इज वेरी एनर्जाइज्ड पर्सन लेट मी से व्हाट इज द लास्ट वर्ड ऑफ रामा
सब लोगों से एक निवेदन है, हमें जितने भी आपने सुना है ये अपने बच्चों को सिखाइए, अपने पोतों को सिखाइए, ये बहुत जरूरी है। हमने एक स्टडी में देखा अभी 10th और 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को दिल्ली में मेजर पब्लिक स्कूलों में, उनको इतना नहीं पता है कि किससे डायबिटीज होते हैं, क्या क्या चीज नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और सरप्राइजिंगली 40% बच्चों को, 10th स्टैंडर्ड बच्चों को ये नहीं पता है कि डायबिटीज से हार्ट अटैक की मात्रा बढ़ जाती है। ये बहुत बहुत खतरनाक सिचुएशन है। हम तो ठीक है, हम 40 साल 50 साल 60 साल में तो आप बहुत कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, बट बच्चे बहुत चेंज कर सकते हैं और वो फ्यूचर है हमारे लिए। और जितने भी आपने सुना है ये अपने बच्चों को सिखाइए, बहुत जरूरी है।
बहुत अच्छा मैसेज दिया। ये क्यों दिया मैसेज, इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि इनका इंटरेस्ट, और ये है पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, ये चाहते हैं हमारे बच्चे आगे के नागरिक हैं, अगर वो अच्छा सबक सीखेंगे तो हार्ट अटैक नहीं होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, द मैसेज इज अ वेरी क्लियर हियर। इफ यू स्मोक अ सिगरेट, सिगरेट विल स्मोक यू। इफ यू च्यू अ टोबैको, टोबैको विल च्यू यू। इफ यू ड्रिंक अल्कोहल, ऑल द हार्मफुल इफेक्ट्स विल बी फेस्ड बाय यू ओनली। व्हाई शुड वी डू इट? डॉक्टर रामाकृष्ण इज टोल्ड, इफ यू वॉन्ट टू सी मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अगर मोटापा देखना चाहते हैं बच्चे के अंदर, माँ के पेट के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को खूब खाना खिलाइए, पकौड़े खिलाइए, जैसा सुनीता ने कहा समोसा खिलाइए, हलवा खिलाइए, तो बच्चा भी मोटा होगा और बीमारियां ही बीमारियां होंगी। तो क्यों खाना है ऐसा? सात्विक खाना, कम खाना, संयम से खाना और समय से खाना। आई ऑलवेज से ईट द राइट फूड एट ए राइट टाइम एट अ राइट प्लेस in a right manner, in a right dose, in a right environment, if you want to be healthy. I'm really grateful to the whole faculty here, all from India and from US, who really helped us to bring before you the some simplest possible guidelines, that healthy heart is an expression of your own choices. And your own choices is an expression of your mindset, and your mindset is an expression of your consciousness. So healthy heart is purely an expression of our own consciousness. Jo ki abhi Satish bhai ji bata rahe the, if you do a raj yoga meditation, you will not smoke, you will not drink, you will not eat the wrong food, and you will have a healthy heart. Let's give a big hand to all the faculty members, and with this we close this session. And I'll hand over the mic soon to Banarsi Bhai, he is here, and Satish Bhai to conduct the proceeding of the next session. The next session is a very important session, what we call as welcoming and reception session for all the faculty members and delegates are from WCC PCI 2014. This session we are doing it for the first time, but all the Brahma Kumari headquarters, they do a very well program and they want to do it in their own way. So I'll hand over the mic to the organizers here. Banarsi Bhai, I'll request him to kindly come on the dais. And then we have Satish Bhai, and I'll request all the faculty members who are with me here to kindly take the front seat in the auditorium. Rick, Lisa, please join us in front. Thank you.
Big announcement.